ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए लाभकारी बताया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन समितियों को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों को विकास हासिल करने में सहायक हो सकता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने और सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस कारण भारत सहकारी क्षेत्र में एक विश्व मित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इस कार्यक्रम में शामिल भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोपके ने भी कहा कि सहकारी समितियों ने इन वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के 130 साल के इतिहास में भारत पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन कर रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक विशेष कारोबारी समूह पर रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले श्री धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सभापति ने कहा कि यह प्रस्ताव दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। उधर लोकसभा में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्य दलों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब दोनों सदनों की बैठक कल बुधवार को होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में भाग ले रहे लोकसभा सदस्यों ने डिजिटल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सदन के सदस्यों के पास अब इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट पर डिजिटल पेन का उपयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध हो गया है। यह संसद को कागज रहित बनाने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में आज से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 परियोजना 1435 करोड़ रुपए के खर्च में आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके तहत मौजूदा तंत्र को पूरी तरह से उन्नत बनाया जाएगा और इसके लिए एक एकीकृत पोर्टल होगा। उन्होंने बताया कि पैन 2.0 के तहत मजबूत साइबर सुरक्षा के उपाय होंगे। पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत 61% से अधिक अंक के साथ ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर खिसक गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।